श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर, जो जगत का नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर है, जगत के ऊपर न्याय को लाएगा। लेकिन इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आज फिर से आपके वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, सुनते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक भाई बहन आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, तनाव में हैं, पारिवारिक उलझन में हैं, अपनी नौकरी की तलाश में हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं। पिता परमेश्वर, आप उन पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें, आज के अध्ययन पर भी अपनी आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आज हम देखेंगे जगत पर परमेश्वर के नियंत्रण को पहचानना। यशाया की पुस्तक 64 अध्याय उसके एक पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। यशाया भावी समय में इसराइल के शेष रहने वाले विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करता है। यहां भी वह व्याकरण में भूतकाल काम में लेता है जिसे भविष्यवाणी का काल कहते हैं। परमेश्वर भविष्य की घटनाओं को ऐसे देखता है जैसे वे घट चुकी हैं और वह घटना के बाद के समय से यशाया को वचन देता है। यशाया परमेश्वर की दुहाई उसी प्रकार से देता है जिस प्रकार महाक्लेश में शेष रहे इसराइली अर्थात बचे रहे इसराइली देंगे। यह अंश कलीसिया के लिए नहीं है क्योंकि यहां कलीसिया नहीं है, यह इसराइल के बचे हुए भक्तों के लिए है। परंतु प्रभु यीशु के अनुयायी होने के नाते हम उनके साथ अपनी पहचान बना सकते हैं। आज हमारी प्रार्थना प्रभु के आने के लिए होना है, हे प्रभु यीशु आ। इस अध्याय में यह तो स्पष्ट है कि यशाया महाक्लेश में इसराइल की प्रार्थना का पूर्वानुमान प्रकट कर रहा है। हम यशाया की पुस्तक 64 अध्याय उसके दो पद में पढ़ते हैं, जैसे आग झाड़ झंखाड़ को जला देती या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जी हाँ, जिस प्रकार आग से पानी उबलता है उसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति के कारण सब जातियां कांपने लगेंगी। आज मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति का बोध नहीं कर पा रहा है। आज कुछ लोग सोचते हैं कि हम ईश्वर से रहित मनुष्य के साथ कैसे उठ बैठ सकते हैं। इसका कारण है कि हम भी उन्हीं की नाई अवभक्त हैं। आज मनुष्य न तो परमेश्वर को मानता है और न ही उसको स्वीकार करता है, परंतु युग के अंत में और मेरे विचार में मनुष्य को समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर हस्तक्षेप करने वाला है। प्रभु यीशु के जन्म के समय मनुष्य में यह अनुभूति थी और अनेक रोमी इतिहासकारों ने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित भी करवाया था। यशाया की पुस्तक 64 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थी, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। अर्थात उस समय पहाड़ पिघल जाएंगे, उसकी उपस्थिति में उनमें से लावा बहेगा। उस समय बैरी पहाड़ों से कहेंगे कि वे उन्हें मेमने के क्रोध से छिपा लें। इसे आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य पुस्तक 6 अध्याय के 16 पद में। हम यहाँ पर फिर पढ़ते हैं यशाया 64 उसके 4 पद में, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई जो अपने बाट चूहने वालों के लिए काम करे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस भी यही बात कहता है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तब आगे पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जानता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय उसका 9 पद यशाया ही का संदर्भ है, परंतु पद 10 में हमें बताया गया है कि पवित्र आत्मा हम पर इन बातों को प्रकट करेगा। महाक्लेश में उन्हें प्रभु यीशु के आगमन तक रुकना होगा। हमारे लिए तो यह कहा जा सकता है पहला कुरिन्थियों के पत्र 13 अध्याय उसके 12 पद में जैसा लिखा है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। मेरे प्रियो, इस संपूर्ण अंश में हम इसराइल के शेष बचे भक्तों के साथ अपनी पहचान बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी आशा है। हम प्रभु यीशु की बाट जोह रहे हैं कि वह हमें आकर ले जाए, और ये लोग प्रभु यीशु की बाट जोह रहे हैं कि वह आकर अपना राज्य स्थापित करे। मेरे मित्रों, इस अंतर को देखने से चूकने वाले बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी और विद्वान ही हैं। वे पहचानने से चूक जाते हैं कि प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को हवा में उठा लेगा और फिर पृथ्वी पर आकर अपने राज्य की स्थापना करेगा। इसी कारण वे हमें उल्टी अर्थात गलत धर्म विज्ञान सिखाते और समझाते हैं। यशाया की पुस्तक 64 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया, हमारी यह दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है। यहाँ पाप स्वीकारन का आरंभ होता है और इसके साथ ही उद्धारकर्ता के मुक्ति कार्य में विश्वास की अभिव्यक्ति है। अब हम आगे देखते हैं जगत में मनुष्य की स्थिति का अंगीकार। यशाया के पुस्तक 64 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। यह पद चीर परिचित है क्योंकि इसे बार बार यह दिखाने के लिए संदर्भित किया जाता है कि मनुष्य में अपनी धार्मिकता कदापि नहीं है। यह इसराइल ही नहीं संपूर्ण मानव जाति के बारे में सच है। यहूदी और अन्य जातियां सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। मेरे मित्रों, हम चाहे किसी काम को भी धर्म का काम कहकर करें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लाखों रुपए देकर गरीबों और आवश्यकता में पड़े हुए लोगों को भोजन करवाना अच्छा लगता है, या अनाथों की और विधवाओं की सुधि लेना अच्छा लगता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में ये काम मैले चित्रों के समान है। आप अशुद्ध वस्तु से शुद्धता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। एक भटका हुआ पापी परमेश्वर के ग्रहण योग्य कुछ नहीं कर सकता है। उसे पहले परमेश्वर के मार्ग पर उसके पास आना होगा। मनुष्य को यह बात समझना बहुत कठिन है, विशेष करके उद्धार से रहित मनुष्य जो कर्मों में विश्वास करता है। लोग सोचते हैं कि हम अच्छा कर्म करके उद्धार प्राप्त करेंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे धर्म के काम मैले चित्रों के समान हैं। फिर हम कैसे उद्धार को प्राप्त करेंगे? यशाया 64 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ते हैं, तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। जी हाँ, परमेश्वर हमारे सृष्टि के समय से ही हमारा पिता है, परंतु मनुष्य ने वह रूप खो दिया है। अब आप और मैं परमेश्वर के पुत्र एक ही विधि से बन सकते हैं, प्रभु यीशु के द्वारा। नए नियम में व्यक्त परमेश्वर के पुत्र अपनी सृष्टि के कारण परमेश्वर के पुत्र नहीं है, परंतु यूहन्ना कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 और 13 पद में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। जी हाँ, यह अंगीकार है कि परमेश्वर हमारा सृजनहार है, वह कुम्हार है, हमारा रचयिता है। किसी पात्र या फूलदान को बनाने वाला एक प्रकार से उसका पिता या रचयिता है। हम महात्मा गांधी को हमारा राष्ट्रीय पिता कहते हैं। पौलुस ने यूनान के एथेंस में प्रचार करते समय यह अंतर प्रकट किया था। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 28 और 29 पद में लिखा है, हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। मनुष्य परमेश्वर की संतान है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया है। जी हाँ, उसने मुझे और आपको बनाया है, परंतु सब नए जन्म द्वारा परमेश्वर की संतान नहीं है। पौलुस के कहने का अर्थ है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, इसलिए हमें मूर्ति बनाकर यह नहीं कहना है कि यह परमेश्वर के स्वरूप में है, या परमेश्वर के जैसा है, या परमेश्वर है। ऐसा करके तो हम परमेश्वर की रचना कर रहे हैं, और परमेश्वर ने उसकी मूरत बनाने के लिए मना किया है। उसने कहा है कि कोई भी प्रतिमा ना बनाओ और ना उसको दंडवत करो। लेकिन आज हम मनुष्य क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर की प्रतिमा बना रहे हैं और उसको दंडवत कर रहे हैं, और इस तरीके से देखें तो हम बना करके उसे ही दंडवत कर रहे हैं, जबकि हमें परमेश्वर अर्थात सृष्टिकर्ता को दंडवत करना है। यशाया 64 अध्याय के 10 पद में लिखा है, देख तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सियोन सुनसान हो गया है, यरूशलेम उजड़ गया है। यह वर्णन यशाया के युग में ही सही नहीं था। ऐसा तब हुआ जब बेबीलोन ने यरूशलेम पर आक्रमण किया था। इसे हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय उसके 9 और 10 पद में पाते हैं। लिखा है, उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को, अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया। यरूशलेम के चारों ओर के शहरपनाह को कसदियों की पूरी सेना ने, जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी, ढा दिया। यशाया की भविष्यवाणी एक एक शब्द पूरी हुई है। हम आगे पढ़ते हैं यशाया 64 अध्याय उसके 11 पद में। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर, जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया और हमारे मन भावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई हैं। जी हाँ, यशाया इस प्रकार वर्णन करता है कि जैसे ऐसा हो गया है। परंतु यशाया के लगभग 100 वर्ष बाद ऐसा हुआ था कि परमेश्वर का मंदिर और यरूशलेम ध्वंस किए गए थे। यशाया 64 अध्याय के 12 पद में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा, क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस घोर दुर्दशा में रहने देगा? यशाया इस अध्याय के अंत में एक प्रश्न पूछता है, क्या तू हे परमेश्वर कुछ नहीं करेगा? यशाया की शेष भविष्यवाणी इस प्रश्न के उत्तर में है। परमेश्वर ने इसराइल पर से तब अपना हाथ उठाया जब इसराइल ने परमेश्वर का त्याग कर दिया था, परंतु उनके लिए और पृथ्वी के लिए परमेश्वर की योजना एवं उद्देश्य में बाधा उत्पन्न नहीं हुई। परमेश्वर अपनी योजना पूरी कर रहा है जो अभी पूरी होनी है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 64 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 65 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है उद्धारकर्ता का तर्क कि उसने इसराइल पर से अपनी छत्रछाया उठा ली, बचे हुए भक्त, नया आकाश और नई पृथ्वी। मेरे मित्रों, अध्याय 64 में हमने यशाया और भक्त जनों की विनती सुनी कि राजा सब बंधनों को तोड़कर पृथ्वी पर आ जाए। अब अध्याय 65 और अध्याय 66 में हम इस विनती का उत्तर परमेश्वर से सुनेंगे। परमेश्वर अति स्पष्ट कहता है कि उनकी अनिष्ठा और उनके पाप परमेश्वर के दंड के उत्तरदायी हैं, परंतु उनके पाप के कारण परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को और आने वाले राज्य के अपने उद्देश्य से नहीं चूकेगा। परमेश्वर ने भक्त जनों को बचा कर रखा है, जिनके द्वारा वह अपने सब भविष्यवाणियां पूरी करेगा। वह फिर से राज्य का दर्शन और नए आकाश और नई पृथ्वी में इसराइल की अनंत स्थिति की चर्चा करता है। यह व्याख्या हमें यशाया के पुस्तक के अंत तक ले जाती है, जहां महिमा की चमक है। हम देखेंगे इसराइल पर से छत्रछाया उठाने के परमेश्वर के कारण। आइए हम पढ़ें यशाया की पुस्तक 65 अध्याय उसके पहले पद में, जो मुझको पूछते भी न थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूं, देख मैं उपस्थित हूं। मेरे मित्रों, यहां वह उन अन्य जातियों की चर्चा करता है जिन्होंने सुसमाचार सुना है। फिलिपी नगर में पौलुस ने मकीदुनिया के पुरुष को दर्शन में देखा था। वहां पहुंचकर उसने पुरुष की अपेक्षा एक स्त्री लुदिया को सुसमाचार की बाट जोहते हुए देखा। वह नदी के तीर पर प्रार्थना सभा करवा रही थी। यद्यपि उसने स्वयं अपनी आवश्यकता को नहीं देखा, पौलुस ने उसे सुसमाचार सुनाया। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 20 पद में पौलुस इस पद का संदर्भ देता है। यशाया बड़े हियाब के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। मेरे प्रियो, हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। हमारे पूर्वज नदी के तीर पर हाथ उठाकर विनती नहीं करते थे। कृपया हमारे मध्य सुसमाचार प्रचारक भेजें। वे उन्हें नहीं चाहते थे। कुछ लोगों को तो उन्होंने जान से मार डाला। आज अन्य जातियां सुसमाचार के लिए विनती नहीं कर रही हैं। सुसमाचार के लिए तो कोई भी विनती नहीं कर रहा है। परमेश्वर उनमें गया जो उसका नाम भी नहीं लेते थे। मैंने उद्धार पाने के लिए कभी प्रार्थना नहीं की थी। उसी ने पहले मेरा उद्धार किया था। जी हाँ, मैं तो उस बालक के समान था जो कहता था, मेरे पापी पैर मुझे लेकर जितनी दूर भाग सकते थे, मैं परमेश्वर से उतनी दूर गया, और मेरा विद्रोही मन मुझे जितनी दूर कर पाया, मैं उतनी दूर हुआ, परंतु वह मेरे पीछे भागा और मुझे पकड़ लिया। हम सब जिन्होंने उद्धार पा लिया है, सबके साथ ऐसा ही हुआ है। यशाया की पुस्तक 65 अध्याय के 2 पद में लिखा है, मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। अब वह यहूदियों इसराइल से कह रहा है। परमेश्वर ने सुसमाचार सबसे पहले यहूदियों को दिया। रोमियों की पत्री 10 अध्याय उसके 21 पद में पौलुस कहता है, परंतु इसराइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अपनी छत्र छाया उन पद से तब उठाई जब उन्होंने परमेश्वर का त्याग कर दिया। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 46 पद में लिखा है, तब पौलुस और बरनाबस ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते हो, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। परिदृश्य यह था, कहने का अर्थ यह है कि यदि यरूशलेम सुसमाचार सुनना नहीं चाहता है तो इफिसुस सुनेगा, और यदि अमेरिका सुसमाचार सुनना नहीं चाहता है तो भारत भी सुनेगा। कोई दूरस्थ स्थान अवश्य सुनेगा। परमेश्वर के अनुग्रह की बाढ़ इस संसार में फैलेगी, यह अवश्य है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उसके वचन लोगों तक पहुंचेंगे। यशाया के पुस्तक 65 अध्याय के 3 पद में लिखा है, ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ा चढ़ा कर और ईंटों पर धूप जला जला कर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। इसराइल को आशीष न मिलने का कारण यही था। वे परमेश्वर से विद्रोह करके मूर्तियों की पूजा करते थे, प्रतिमाएं बनाते थे, जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। यशाया 65 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा है, ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, जो सुअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने वर्तनों में रखते हैं, जो कहते हैं, हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। ये मेरी नाक में धुएं व उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। यह तो इसराइल पर से छत्र छाया हटने की सूची में कुछ ही कारण है। वे परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे थे और बार बार वही कार्य कर रहे थे जिसे परमेश्वर मना कर रहा था। यशाया 65 अध्याय उसके 6 और 7 पद में हम आगे पढ़ते हैं, देखो यह बात मेरे सामने लिखी हुई है, मैं चुप न रहूंगा, मैं निश्चय बदला दूंगा, वरन तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा, क्योंकि उन्होंने पहाड़ों पर धूप जलाया और पहाड़ियों पर मेरी निंदा की है। इसलिए मैं यहोवा कहता हूं कि उनके पिछले कामों के बदले को मैं इनकी गोद में तौल कर दूंगा। मेरे मित्रों, इसराइल घमंड में था। वे परमेश्वर के धर्म तंत्र को बाहरी रूप से पूरा कर रहे थे। उनके मन परमेश्वर से दूर थे। वे अपराध तो ऐसे करते थे जैसे धार्मिक परंपरा को निभा रहे हों। इससे परमेश्वर का नाम खराब हुआ। मेरे मित्रों, आज हम में से कई लोग ऐसा ही कर रहे हैं। हम परमेश्वर की कलीसिया में जाते हैं, आराधनालय में बैठते हैं, लेकिन हमारे मन परमेश्वर से दूर हैं। हम अपने अंदर के उन पापों को जानते हैं जो हम प्रतिदिन अपने जीवन में करते हैं, लेकिन उससे छुटकारा पाना नहीं चाहते, उससे हम छोड़ना नहीं चाहते, परंतु बाहरी रूप से दिखावा करते हैं कि हम परमेश्वर के नजदीक हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि हम इनसे बच नहीं सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए और सच्चे मन से आए। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। आइए इस वचन के प्रकाशन में हम अपने आप को जांचें और देखें। प्रभु से कहें कि प्रभु आप हमारी सहायता करें, ताकि मैं सच्चा धार्मिक जीवन जी सकूं, उस उद्धार के आनंद को प्राप्त कर सकूं जिसे आप देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसराइलियों को इसके बारे में चेतावनी दी जा रही है और निश्चय ही परमेश्वर उसका प्रतिफल उन्हें देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको भी आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
बदन का लहू दिया प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। तेरे लिए।